नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आयु कपिल। मैं कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अध्याय एक। तो अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक खोलें आप और उसमें अध्याय एक निकालें, जिसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। पेज नंबर 1 है ये बुक का। ये चैप्टर 1 है बच्चों, और इसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो आपको क्या लग रहा है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सभ्यता, इस वर्ड का मीनिंग आपको पता है बच्चों? सभ्यता का मतलब इंग्लिश में हम इसका मीनिंग देखें तो होता है सिविलाइजेशन। आपने ये वर्ड सुना होगा मे बी इंग्लिश में। और सभ्यता होता है कि रहने का तरीका, है ना, रहन सहन का तरीका, किसी समाज में किस तरह से लोग रह रहे हैं, ये उनकी सभ्यता होती है। जैसे आज हम और आप जिस तरह रहते हैं समाज में, तो ये हमारी सभ्यता है। और हमारी सभ्यता दिखाती है कि हम कितने सिविलाइज्ड हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत गंदे कपड़े पहनता है और खाना अच्छे से नहीं खाता, गिरा के खाता है, हाँ, और उसके बोलने का तरीका भी अच्छा नहीं है, बहुत गंदी तरह रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि बहुत असभ्य व्यक्ति है, हाँ, सभ्यता नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो उससे हमारा कहने का मतलब ये रहता है कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता, यानी कि इसको कुछ तरीके नहीं पता है रहने के, बोलने के, खाने पीने के, कपड़े पहनने के, है ना। तो वो हमारी सभ्यता होती है, किस तरह से हम एक समाज में रह रहे हैं, ये हमारी सभ्यता को दर्शाता है बच्चों। तो हमारे समाज में हम आज जिस तरह रह रहे हैं, है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लग्जरी है हमारे पास, इतने सारे ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास, हर तरह के यूज़ करने के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, पर ये सब पहले तो नहीं था। पहले, बहुत साल पहले, तो दुनिया में आविष्कार बहुत कम हुए थे। तो तब जो सभ्यताएं विकसित हुई, है ना, लोगों ने किस तरह रहने के लिए प्रेरणा ली और किस तरह उन्होंने रहने की शुरुआत की एक साथ, एक समाज के तौर पे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सभ्यता का मतलब है कि किसी एक खास समय पे एक खास तरह के लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो उनकी सभ्यता है। तो प्राचीन समय में, पुराने समय में किस तरह लोगों ने सभ्यताएं विकसित की, किस तरह उन्होंने अपने रहन सहन को ढाला, किस तरह उन्होंने एक समाज का निर्माण करना चाहा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम अपने जो पूर्वज हैं, जो हमारे बहुत पहले लोग रहे हैं इस धरती पर, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह सभ्यताओं की शुरुआत की, कि अब उसकी इवोल्यूशन के बाद उसमें चेंजेस होते गए और आज हम इस एरा में पहुंच चुके हैं जहां पर हम इस तरह के समाज में रह रहे हैं, जहां हमारे पास सब कुछ है, कंप्यूटर से लेकर फोन से लेकर एसी तक, है ना। तो हम जानेंगे पुराने समय में किस प्रकार की सभ्यताएं हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग चैप्टर, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है, इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है। भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो ये समझा रहे हैं कि जो हमारा देश भारत है, या आप एक पूरा विश्व को ही अगर आप सोचें, पूरी धरती पर ही जो हम लोग आज समाज में जी रहे हैं, जिस तरह के समाज में, जैसी आधुनिकता की जीवन शैली आज हम अपना चुके हैं, ये एकदम से नहीं आ गई, या ये ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से कोई उठा और उसने एकदम फ़ोन बना दिया, है ना, एकदम से कोई उठा और कल तक तो किसी के पास कार नहीं थी और आज सबके पास कार आ गई, ऐसा नहीं हुआ है ना। बहुत धीरे धीरे ये आविष्कार हुए हैं, धीरे धीरे चीज़ें विकसित होना शुरू हुई, है ना। किसी एक समय में एक चीज़ का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तकनीक विकसित हुई, तो फिर कोई और चीज़ बनी उससे। इस तरह ये जीवन बढ़ा है आगे इस धरती पर। तो आधुनिक सभ्य जीवन जिसमें हम अब रह रहे हैं, वो बहुत लंबे और सतत विकास का परिणाम है। निरंतर एक विकास की ओर प्रयास रहे हैं समाज के, तब जाके हमें वो चीजें मिली हैं जो हम आज यूज कर रहे हैं, जिनका आज हम उपभोग कर रहे हैं। तो जो मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति है, जब स्टार्टिंग में मनुष्य थे इस धरती पर, तब से लेकर अब तक का जितना भी विकास और पतन हुआ है उसको जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आज की स्टेज तक पहुंचे हैं वो इतिहास जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है अपनी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि किस तरह उन्होंने चीज़ें विकसित की, किस तरह विकास हुआ, किस तरह हमने देखा कि चीज़ों का आविष्कार किया जाता है, किस तरह की सोच थी उस समय के लोगों की, कि उससे हम आज बढ़ते 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 आज के समय तक पहुंच चुके हैं। और रही बात अपने भारत की बच्चों, तो भारत हमेशा से ही संस्कृति और सभ्यता के मामले में बहुत ही संपन्न और बहुत ही अच्छा राष्ट्र रहा है। हमारे देश पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम इतनी हरी भरी संस्कृति के मालिक हैं। हमारे देश में संस्कृति की कभी भी कोई कमी नहीं रही है, और शायद इसी कारण बहुत अच्छी अच्छी सभ्यताएं हमारे देश में रही हैं। प्राचीन सभ्यता के मामले में हमारा देश जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश के लोगों ने शुरुआत से ही एक सभ्यता में रहना शुरू किया, समाज को डेवलप करके रहना शुरू किया था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये कह रहे हैं, ना सिर्फ भारत देश बल्कि मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान जैसे भी प्रमुख देश हैं जिनमें बहुत अच्छी और बड़ी प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपने देश भारत की सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहली जो अपने भारत की सभ्यता है उसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है ये बच्चों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता, भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया है कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियां जैसे सरस्वती, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ कर दिया था, और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता व संस्कृति का विकास कर लिया था। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बताते हैं कि जो हमारा देश भारत है उसमें विश्व की बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं, और हमारा देश भारत स्वयं में भी दुनिया के सबसे पुराने और प्राचीन देशों में से एक है। और इसका कारण ये है कि जो हमारा देश है उसमें बहुत प्राचीन और सभ्यता का इतिहास हमें मिलता है। हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं, हमें प्रूफ्स मिले हैं, हमें हिस्ट्री ऐसी मिली है हमारी कि जो हमारा देश है उसमें बहुत पुराने टाइम से ही सभ्यता और संस्कृति विकसित रही है। जो पुरातत्वविद हुए हैं उन्होंने पता लगाया है कि आज से 5-7 हजार वर्ष पूर्व भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियां, तो उनके आसपास लोगों ने रहना शुरू किया। अच्छा बच्चों, एक वजह ये रहती है नदी के पास रहना, इसलिए उन्होंने शुरू किया क्योंकि आप सोचो नदी होगी तो वहाँ पानी रहेगा, और जीने के लिए पानी, जल ही जीवन है कहते हैं ना, तो पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक इंसान के जीने के लिए, तो पानी रहे वहाँ पर, पानी के कारण फिर फसल वहाँ उगाना इजी हो जाता है, एग्रीकल्चर करना है ना, खेती करना बहुत आसान हो जाता है, अनाज उगाना बहुत आसान हो जाता है, फिर पशु पक्षी भी वहीं रहते हैं, पेड़ भी ज़्यादातर वहीं उगते हैं जहाँ पानी का कोई स्रोत हो, तो इस कारण से जीवन बहुत फलता फूलता है नदियों के किनारे, इसलिए लोग प्रेफर करते थे कि हम नदियों के किनारे रहें। और आज भी आप देखो जितने भी मैदानी इलाके हैं जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर ही आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाएंगे, लोग सबसे ज्यादा वहीं बसना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें जीवन को चलाने के लिए हर एक महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाए, और जो कि उन्हें मिलती है नदियों के पास। तो वही रीजन भी पहले रहा कि लोगों ने सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे रहना आरंभ किया, और फिर उन्होंने अपनी एक बस्ती बसाई वहां पर, उन्होंने साथ में रहना आरंभ किया। अकेले अकेले इंसान नहीं रह सकता है, तो उसने मनुष्य ने अपने समूह बनाए और उन्होंने बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया। इन बस्तियों में रहते हुए बच्चों उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया और अपनी संस्कृति विकसित की। उसी के बारे में अब हम पूरा जानेंगे। तो ये रीजन था कि शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने इतने 5-7 हज़ार वर्ष पूर्व बस्तियां बनाकर समूहों में रहना शुरू किया और अपनी सभ्यता का विकास किया। पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो पुरातन पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेनगे खबब सिंहमुख वह हिमनद से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से यह आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र गघघर हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ केरन में प्रवेश कर प्रभासपतन के पास समुद्र में गिरती है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लग गया है तथा अंतः सलीला के रूप में आज भी वह प्रवाहित है। वैदिक साहित्य रामायण व महाभारत में सरस्वती नदी के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण के भाई बलराम ने सरस्वती नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी, इसका विवरण प्राप्त होता है। राजस्थान के मरु प्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे बसे कई नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान हैं, कालीबंगा उनमें से एक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सिंधु नदी है, जो कि इस सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, वो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, जो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित है सेनगे खबब सिंहमुख और हिमनद, वहां से ये सिंधु नदी निकलती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, फिर आदि बद्री से होती हुई ये मैदान से प्रवेश करती है और वहां पे दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई ये कुरुक्षेत्र गघघर हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। फिर बीकानेर और जैसलमेर से होती हुई गुजरात की कच्छ के रण में प्रवेश करती है और फिर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती है। ये पूरा बताया है बेसिन उन्होंने कि सरस्वती नदी कैसे कैसे उद्गम स्थल से समुद्र तक मिलती है, वो पूरा इन्होंने डिफाइन किया है। फिर आज का ये बताते हैं कि आज जो सरस्वती नदी है वो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अब जो सरस्वती नदी है उसमें पानी नहीं है और अब वो सूख चुकी है, अब वो अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना में जो परिवर्तन हुआ उस वजह से ये विलुप्त हो गई। पहले लोग मानते थे कि ये शायद सिर्फ हमारी कल्पना है, क्योंकि आज हम सरस्वती नदी को नहीं देख पा रहे हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ हमारी कल्पना हो कि एक सरस्वती नाम की नदी यहाँ बहती थी, क्या पता वो कभी हो ही ना। पर नहीं, भू उपग्रह के द्वारा तस्वीरें खींची गई और उससे पता चला कि सरस्वती नदी के बहाव का क्षेत्र यहाँ पर था, जो कि उन्होंने ऊपर बताया है, और यहाँ पर सच में सरस्वती नदी बहती थी। अब वह अंतः सलीला के रूप में प्रवाहित है। इसका क्या मतलब हुआ, अंतः यानी अंदर की तरफ और सलीला यानी नदी। तो ये यही कह रहे हैं कि अब वो भौतिक रूप से नहीं है हमारे समक्ष, हमें दिख नहीं पा रही है कि उसमें पानी है, पर अभी भी वो यहाँ पर मौजूद है, अभी भी उसके जो साक्ष्य हैं, जो उसके पुराने जो उसके बहाव क्षेत्र के जो साक्ष्य हैं वो अभी भी उपलब्ध हैं। तो ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है, वो अभी भी एक तरह से हमारी धरती पर मौजूद हैं, भले ही वो भौतिक रूप से ना हो। वैदिक साहित्य जो हमारे रही हैं बच्चों, रामायण और महाभारत, उसमें भी सरस्वती नदी का जिक्र आता है, तो उसमें पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि ये एक हमारी कल्पना मात्र तो है नहीं, ये वाकई में थी। जो महाभारत युद्ध के समय कृष्ण के भाई थे बलराम, उन्होंने सरस्वती नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी, ऐसा प्रमाण हमें देखने मिलता है महाभारत में, और उससे हमें पता चलता है कि वाकई सरस्वती नदी अस्तित्व में थी एक टाइम पर। राजस्थान के मरुप्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे जो शहर बसे हुए थे उनके आज भी अवशेष मिलते हैं, पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान हैं, और जो कालीबंगा है वो उन्हीं में से एक है बच्चों। ठीक है, आगे लिखते हैं कि सिंधु व सरस्वती नदी तथा इनकी सहायक नदियों के विस्तृत भूभाग में विकसित मानव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था कि भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। मिट्टी के टीलों में दबी सभ्यता का काल कौन सा था? यह कब चरमोत्कर्ष पर थी और कब इसका अवसान हुआ? इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इस सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म काफी पहले हुआ था और 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसके बाद यह 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर पहुंच गई थी। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान आरंभ हुआ और 1500 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह विलुप्त हो गई। तो अब ये हमें वो पूरा टाइम पीरियड बता रहे हैं जब जो हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसका विकास हुआ और इसका पतन हुआ। ये कह रहे हैं कि पूरा जो भूभाग है जहाँ पर सरस्वती और सिंधु नदी बहती थी उसके चारों तरफ का विस्तृत जितना भी भूभाग है, इन नदियों के किनारे जब लोगों ने बसना शुरू करा तो यही जो पूरी भूभाग पर मानव सभ्यता का विकास हुआ इसी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सरस्वती और सिंधु नदी तथा इनकी सहायक नदियों के विस्तृत भूभाग में विकसित जो मानव सभ्यता हुई है उसे ही सिंधु सरस्वती का माना जाता है बच्चों। इस विकसित सभ्यता से पहले इसके बारे में किसी को पहले पता नहीं था कि ये क्या थी, क्या भारत में भी इतनी प्राचीन कोई सभ्यता रही है, और रही है तो कितने समय पर रही, कौन सा वो टाइम पीरियड था जब ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जब ये सबसे ज्यादा फल फूल रही थी, ये किसी को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। मिट्टी के टीलों में ये पूरी सभ्यता दबी हुई थी, यानी सारे जो अवशेष हैं इसके वो मिट्टी के टीलों में दबे हुए थे। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि हो सकता है हमें जानकारी मिले, तो उन्होंने इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट की है ना। जो ये पुरातत्वविद हुए हैं उन्होंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, एक्सकेवेशन हुआ यानी खुदाई की गई, और उसके बाद हमें साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, चीजें मिली इस सभ्यता से जुड़ी हुई। फिर हमें पता चला कि 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी है ना, और 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक ये चरम विकास पर पहुंच गई थी, यानी कि इतने टाइम पीरियड में ये सबसे ज्यादा विकसित थी। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं कि 2750 ईसा पूर्व के समय के बाद इस सभ्यता का एक तरह से पतन आरंभ हुआ और फिर 1500 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये पूरी तरह विलुप्त हो गई यानी खत्म हो गई। अब हम जानेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन के बारे में, यानी किस तरह ये उत्खनन हुआ, किस तरह पता चली चीजें, रिसर्च हुई, खुदाई हुई और हमें चीजों के बारे में पता चला। तो सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक दूसरे पुरातत्व वेता राखल दास बैनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदाड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल आए। खोज के क्रम में ओरल स्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत अब पाकिस्तान में हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंध है तब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं, उनमें से 900 स्थल भारत में हैं तथा 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के कुछ पुरातात्विक बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनवेरी वाला आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि के बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में हैं। ये क्या बता रहे हैं कि 1921 में जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, उन्होंने पंजाब जब अविभाजित था भारत, क्योंकि आपको पता है 1947 में हमारा आज़ादी हुई, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो 1921 में यानी अविभाजित था भारत, उसके पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास जो नदी बहती थी रावी, उसके बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले को खोज निकाला। उन्होंने खोज निकाला उस टीले को, उसके बाद उन्हीं की तरह एक दूसरे पुरातत्व वेता राखलदास बनर्जी ने 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदाड़ो नामक टीला खोज निकाला। और उस टीले को मोहनजोदाड़ो कहा जाता था क्योंकि मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल आए। खोज के क्रम में ओरलस्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत, जो कि अब पाकिस्तान में है, हाकरा नदी, जो भारत की विलुप्त हुई प्राचीन नदी का विस्तार क्षेत्र था, उसके सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि इन तीन लोगों ने किस तरह तीन जगह पुरानी जो सभ्यता के स्थल थे उन्हें खोज निकाला। फिर सरस्वती जो सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित आज तक इस तरह से 1500 स्थल खोज लिए गए हैं। ठीक है, पहला तो खोजा था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने, फिर 1922 में खोजा राखलदास बनर्जी ने, और फिर इसी क्रम में ओरलस्टाइन ने भी खोजा था पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत में, कहाँ पर, जो हाकरा नदी है और जो कि सरस्वती नदी के विस्तार का क्षेत्र था एक समय पर उसके सूखे रास्ते में। और इसी तरह खोजते खोजते आज तक लगभग 1500 स्थल खोज लिए गए हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के। ठीक है बच्चों, उसमें से कह रहे हैं 900 स्थल तो भारत में हैं और 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया तो उसके बाद कुछ जो स्थल थे जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और गनवेरी वाला, जो कि बड़े स्थल माने जाते हैं, वो चले गए पाकिस्तान के हिस्से में, और कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर जैसे बड़े कुछ पुरातात्विक स्थल भारत के हिस्से में आ गए। ठीक है, आगे है कि भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती दृश्य पद्धति नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले। सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा है। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संधोल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल आदि स्थानों पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये बता रहे हैं कि फिर जब देश का विभाजन हो गया, हमारा भारत देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद से, फिर पुरातत्व विशेषज्ञों ने और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में नए ढंग से और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कार्य आरम्भ किया कि हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में और ज़्यादा पता लगाएं। तो फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले या समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली जो सरस्वती दृश्यवती नदी थी, उस घाटी से संबंधित जितने भी नए स्थल खोज निकाले जा सकते थे उन्हें खोज निकालने के लिए काम प्रारंभ किया। 1953 में फिर अमलानंद घोष जी ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में ऐसे लगभग 25 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले, और जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा है। फिर पंजाब, गुजरात और हरियाणा और राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली और जो इम्पोर्टेंट स्थान मिले इस सभ्यता से रिलेटेड, जो अवशेष मिले हैं उनके नाम लिखे हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। आगे क्या बताते हैं कि इस सभ्यता की विशेषता क्या रही है। अभी हमने उत्खनन पढ़ा कि किस तरह से इस सभ्यता के स्थल खोजे गए, है ना, किस तरह से पता चला इस सभ्यता के बारे में। अब हम जानेंगे कि सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। जब हमें कोई चीज मिल जाती है फिर हम उसके बारे में जानते हैं कि अच्छा इसकी खास बात क्या है। तो अब हमें स्थल मिल गए, अब हम जानेंगे कि उन स्थलों की यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या रही हैं, ये जानते हैं। पहला है नगर नियोजन। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। ऐसे नगरावशेषों में हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो, दोनों अब पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा तथा धोलावीरा लोथल गुजरात के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन नगरों के अवशेषों से यह तथ्य भी उद्घाटित होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों व आवासों का निर्माण करते थे। उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान आधुनिक स्थापत्य अभियांत्रिकी सिविल इंजीनियरिंग के स्तर का था। ये क्या बता रहे हैं कि सबसे बड़ी एक तरह से जो विशेषता है इस सभ्यता की वो है नगर नियोजन। यानी कि जो इस सभ्यता में रहने वाले भारतवासी थे वो एक नगर बनाकर रहना जो है उन्हें पसंद करते थे। नगर से मतलब कि वे घरों का निर्माण करते थे, भवनों का निर्माण करते थे, है ना, और उस तरह उसमें रहते थे। जो सिविल इंजीनियरिंग होती है ना उसका वो बहुत यूज करते थे। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है, फिर कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा और धोलावीरा लोथल गुजरात। इससे जो हमें अवशेष मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को प्रूफ करने में कि इस सभ्यता के जो भारतवासी थे वो योजना बनाकर रहते थे, वो अपने घरों का निर्माण करते थे, भवनों का निर्माण करते थे और एक पूरी योजना बनाते थे, पूरा मैप बना के आउटलाइन करके पूरा शहर को कि कहाँ पे क्या होगा बिल्डिंग। जैसे आज हम कुछ बनाते हैं घर तो हम पहले उसका नक्शा बनवाते हैं ना, तो इस तरह से पूरा योजना बनाकर वो अपने घरों का निर्माण करते थे। जो उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान है वो आधुनिक स्थापत्य यानी सिविल इंजीनियरिंग के स्तर का था। जैसे कि आज की सिविल इंजीनियरिंग है उस लेवल का था उन लोगों का उस टाइम का ज्ञान, जिस तरह से उन्होंने भवन निर्माण किए हैं, जो उनका ज्ञान था इस संबंध में वो आज के सिविल इंजीनियरिंग के लेवल का है। तो इससे हमें पता चलता है कि नगर नियोजन के साथ वो रहते थे उस सभ्यता में। तो आगे क्या है इसमें, नगर की आवास योजना। अब हम नगर नियोजन किस तरह से किया उसके फर्दर पॉइंट्स पढ़ेंगे। चार पॉइंट्स हैं कि किस तरह से नगर नियोजन उनका हमें दिखता है। तो पहला उसमें पॉइंट है कि नगर की आवास योजना। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। सामान्यतः प्रत्येक मकान के बीच में खुला आंगन रखा जाता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने या परिंडे, शौचालय और स्नानघर अलग से निर्मित होते थे। तो पहला क्या है पॉइंट के नगर की आवास योजना थी, यानी घर हो बहुत ही सलीके से उनकी योजना विकसित थी। कैसे कि सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली थी और जो नगरों की आवास योजना थी उससे एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। पूरी सड़क, जैसे आज होता है ना सड़क बनाई जाती है और उसके इधर साइड दोनों साइड घर होते हैं, इस तरह की हमें देखने मिलती है उस समय की जो व्यवस्था थी कि सड़क प्रणाली थी और उस कारण से जो घर बनाए जाते थे वो फिर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित तरीके से हमें मिलते थे। जैसे कि एक तरह से आज होता है सड़क होती है फिर उसके आगे खंड बढ़ जाते हैं, मोहल्ले बन जाते हैं, है ना, इस तरह की व्यवस्था उस समय पर थी। और ये माना जाता था कि एक घर जो बनाया जाता था उसमें बीच में खुला आंगन रखा जाता था और उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, और हर मकान में पानी रखने के लिए फिरौने रहते थे, शौचालय रहता था, स्नान घर अलग से निर्मित होते थे। तो कितनी सही आवास योजना उस समय हमें मिलती थी, ऐसे अवशेष मिले हैं बच्चों। अगला क्या है कि सड़क व्यवस्था थी। सड़क व्यवस्था किस तरह थी? सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबद्ध नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जहां चौराहे बने हुए थे। नगरों की मुख्य और बड़ी सड़कें सामान्यतः 10 मीटर, छोटी सड़कें 5 मीटर तथा गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कों के किनारों पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान रखे रहते थे। उस समय सड़क व्यवस्था बहुत अच्छे रूप से निर्मित थी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की पूरी अच्छे से एकदम सीधी सड़कें कटी हुई थी और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जहाँ चौराहे बने हुए थे बच्चों। और जो बड़ी सड़कें होती थी वो सामान्यतः 10 मीटर चौड़ी और छोटी सड़कें सामान्यतः 5 मीटर चौड़ी होती थी। जो गलियां हैं वो 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। कूड़ा कचरा डालने के लिए उन सड़कों के किनारों पर कूड़ेदान भी रखे रहते थे। अगला जो पॉइंट है नगर नियोजन में वो है नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंध। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। नगरों की गलियां, सड़कों और मुख्य सड़कों पर बनी छोटी बड़ी नालियों और गटरों से सहज में ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मकानों, मोहल्लों और पूरे नगर से गंदा पानी बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था थी। रोजमर्रा का कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पात्र रखे जाते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में निजी मकानों एवं नगरों में सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता का जो प्रबंध नजर आता है उससे यह साफ जाहिर होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन उच्च स्तर का था। वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा और उपयोगिता को अधिक महत्व देते थे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। तो ये क्या बता रहे हैं कि उस सभ्यता में नगर की सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था। जो जल निकास प्रणाली है, घर से पानी के निकलने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई थी और स्वच्छता का प्रबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया गया था। कैसे के मकानों की स्वच्छता और सफाई के लिए उन्होंने नगरों में गलियों में नालियाँ बनाई हुई थी छोटी बड़ी। घरों से नालियाँ निकलती थी जो कि गटरों में सहज रूप से जाती थी, और सड़कें और मुख्य सड़कों पर भी नालियां बनी हुई थी ताकि कहीं भी पानी ना रुके और पानी चला जाए। नगरों की गलियों में भी नालियां बनी हुई थी, यानी जो पानी के निकास की प्रणाली थी, पानी के निकलने का जो रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा सुलभ था, बहुत ईजी था, और वो पानी फिर गटर में चला जाता था। मकान और मोहल्लों से और जो पूरा नगर है वो कभी भी गंदे पानी को ठहरने नहीं देते थे। हर जगह नालियों का बहुत अच्छे से निर्माण किया गया था ताकि कहीं भी गंदा पानी ना रुक जाए। कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पात्र रखे जाते थे, और वहाँ पर निजी मकानों में भी और पूरे नगर में भी सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता का प्रबंध बहुत ही अच्छा नजर आता है। और उससे ये हमें पता चलता है कि भारतवासियों का उस समय सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में कितना उच्च स्तर का जीवन था, कितने अच्छे तरीके से वहाँ सब लोग रहते थे। वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा और सफाई को पसंद करते थे, और उन्हें कितने अच्छे से पता था कि सफाई कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। लास्ट जो विशेषता है नगर नियोजन में वो है विशेष निर्मितियाँ। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की जो पुरातात्विक खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियां, भवन और इमारतों के भग्नावशेष निकले हैं। इसमें नगर की गढ़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान, भट्टियां, यज्ञ वेदियां, विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार आदि प्रमुख हैं। ये अवशेष सभ्यता की उन्नत व्यवस्था व वैज्ञानिकता का प्रमाण है। नगर नियोजन में बच्चों, जब आप सोचो आप एक शहर में रहते हो तो उस समय के लोगों ने कितना अच्छा नगर नियोजन किया था, ये इस बात से भी पता चलता है कि हमें कुछ ऐसी निर्मितियों के अवशेष मिलते हैं जो कि विशेष रूप से बनवाई गई थी एक शहर के विकास के लिए। मतलब जब एक शहर में लोग रहते हैं तो इमरजेंसी के टाइम पे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उनकी स्टोरेज करके रखनी चाहिए। शायद इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें दिखता है कि वहाँ पर पुराने उस सभ्यता में विशाल अन्नागार बने हुए थे और विशाल स्नानागार भी थे, क्योंकि वहाँ वो लोग फेस्टिवल भी मनाते होंगे, उनकी अपनी एक संस्कृति होगी। तो विशाल स्नानागार हमें मिलते हैं, विशाल अन्नागार हमें मिलते हैं, भट्टियाँ मिलती हैं, यज्ञ वेदियाँ मिलती हैं हमें उस सभ्यता में। बड़े बड़े निर्माण किए गए थे, बड़े बड़े भवनों के, इमारतों के हमें ऐसे भग्नावशेष मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही एक समृद्ध सभ्यता रही है, और नगर नियोजन के मामले में वो सब एक शहर में बिल्कुल अच्छे समाज की तरह बहुत ही आधुनिकता से, उस समय की बात करें तो उस समय भी वो बहुत आधुनिकता से रहते थे, बहुत उन्नति के साथ वो रहते थे, और वैज्ञानिकता का प्रमाण हमें इससे मिलता है कि उनकी सोच कितनी वैज्ञानिक थी, कि वो साइंटिफिकली हर चीज़ को डिज़ाइन करते थे और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी सभ्यता का और भवनों का विकास और निर्माण करते थे बच्चों। ठीक है, आगे जो इसकी विशेषताएं हैं इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मुझे लगता है अभी तक आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा चैप्टर, यहाँ तक का पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।